अब हम चलेंगे अगले सबक पे, जिसमें हमारे लिए बहुत कुछ है। एक एक आयत बल्कि इसे एक पूरे सबक में हम तीन बड़ी चीज़ें कवर करने वाले हैं। मैं जहाँ तक की आयतें एक जगह होंगी उसको इकट्ठा पढ़ूंगी और इंशाअल्लाह ताला उसकी साथ साथ वजाहत करते हुए आपको तफसीर बताऊंगी। फिर हम सेकंड पे जाएंगे, यानी आप कह सकते हैं कि आज के सबक को हमने तीन हिस्सों में इंशाअल्लाह ताला पूरा करना है। मेरे साथ रहिएगा, एक एक आयत पे थोड़ा सा कलम रखेंगे, नज़र रखेंगे, तो आपको खुद ही बाद में इसका फ़ायदा होगा। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं आयत नंबर 62, इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए। लिखिए, आमनू से मुराद उम्मते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हालांकि हर दौर के नबी की उम्मत ईमान लाई थी, लेकिन यहाँ तकाबुल है आगे दूसरों का, तो यहाँ आमनू से कोई आपसे कल पूछ सकता है ये सवाल, तो आप बताएंगे कि आमनू से मुराद यहाँ उम्मते मोहम्मद है। और ईमान के साथ ही ताल्लुक और रबता रिश्ता जुड़ता है। दूसरे, वल्लज़ीना हादू, और वो लोग जो यहूदी बन गए। हादू कौन है? उम्मते मूसा। अभी इसकी वजाहत बाद में करती हूँ। पहला गिरोह है उम्मते मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरा है उम्मते मूसा, व नसारा और नसारा, ये कौन है? उम्मते ईसा अलैहिस्सलाम। चौथा गिरोह, व साबेईन और साबी, साबी कौन है? किसी भी दीन से निकले हुए। अभी इसकी तफसील होगी, लेकिन यहाँ सिर्फ इसको हम इस एंगल से पूरा करते हैं कि इसका नाम तीन बड़े गिरोहों के साथ आया है, तो दैट मीन के समथिंग इज स्पेशल, इनके अंदर कोई ना कोई खास बात होगी जिसका तذکرہ है। तो फरमाया कि साबी, आप इसको साबी भी कह सकते हैं। चार गिरोहों का तذکرہ करने के बाद फरमाया, मन आमना बिल्लाही, जो कोई ईमान लाया अल्लाह पर। मन क्या है? मुब्तदा। हालांकि पहले तीन चीजों से बात की इब्तदा हो चुकी थी, आमनु हादु वन नसारा, तो यहां मन की जरूरत नहीं थी। जिनको शौक है या लिखना चाहें वो लिख लें कि ये मन यहां इस आयत में एक की बजाय दो मुब्तदा को ला रहा है, क्योंकि इससे आगे तफसीर में फर्क पड़ना है इसलिए बोल रही हूँ। नहीं लिख सकेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लिखना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं। फरमाया, जो कोई भी इनमें से जो भी कोई आमन बिल्लाही, ईमान लाया अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर और यौम आखिर पर, वामिला सालेहन और अमल किया साले, फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, बस इनका अजर है इनके रब के पास, वला खौफुन अलैहिम और ना खौफ होगा उन पर, वला हुम यहज़नून और ना वो गमजदा होंगे। ये है कुरान पाक की सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टैंड की जाने वाली आयत। मुस्लिम्स की तरह नॉन मुस्लिम्स भी इस आयत को बड़े शौक से पढ़ते हैं, और इस आयत को कोट करके बास लोगों ने आज वहदते अदियान का नज़रिया बना डाला। अब वहदते अदियान क्या है और ये सारा कुछ क्या है, थोड़ा सा इसका खुलासा दे के फिर आयत के साथ चलाऊंगी आपको, क्योंकि अहम आयत है। वहदते अदियान क्या है? बहुत सिंपल सा इसका आपको मैं मफहूम अगर बता सकूँ तो वो क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना लाजमी नहीं है। कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने की कतन ज़रूरत नहीं है, बल्कि हर मज़हब वाले को उसके मज़हब पे रहने दो और ये गुमान रखो कि जो अच्छा काम वो कर रहा है अल्लाह उसके बदले में उसको जन्नत देगा। बात वाज़े? यानी इस आयत में लोगों ने एक नज़रिया घड़ लिया कि मुसलमान होना ज़रूरी नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना ज़रूरी नहीं, जो जिस दीन में बस। और दूसरा इसका और एक तरीका क्या है, हर दीन की अच्छी अच्छी बातें ले लो, हर एक की अच्छी ले लो और मान के एक नया दीन बना लो और उसको करो। मसलन 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाओ तो 10 ज़िलहज को ईद उल अज़हा भी मना लो, और जब मौसम बदले तो कुछ लोग होली खेलें तो तुम भी होली खेल लो, और इसके बाद कोई हाथ में कड़ा पहन लेता है ये सोच करके ये मुझे बलाओं से टालेगा तो तुम भी टाल लो। करो क्या? अच्छे अच्छे काम करो, बस काम अच्छे करो, मोहब्बतों की बात करो, बी पेशेंट, बी टॉलरेंट और लिव एंड लेट लिव, जी और जीने दो। देखने में ये बातें बड़ी मीठी मीठी हैं, बड़ी खूबसूरत हैं। आज के दौर में बहुत सारे लोग जो अपने आप को पीस मेकर कहते हैं, वो इन आयात को कोट करके कहते हैं, देखो कुरान भी तो यही कह रहा है कि ईमान वाले यहूदी नसरानी और साबी सारे ईमान पे जाएंगे, जन्नत में जाएंगे और इसके बाद बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। حالانکہ آپ دیکھیے کہ صرف اس ایک آیت کو لے کر اتنا بڑا نظریہ اخذ کر لینا یہ انسان کی حماقت کی بات ہے۔ نوٹ کیجئے گا کہ اس آیت میں دین کی باریکیاں نہیں بتائی گئی۔ اصل میں اس آیت کا جو ایک بڑا سا میں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے نا کوڈ ورڈ، ہر چیز کا کوڈ ہوتا ہے نا، وہ لگائیں تو پھر آگے سارے تالے کھلتے جاتے ہیں۔ اس آیت کا کوڈ ورڈ میری نظر میں جو ہے، آپ بھی اسے ملتا جلتا جو مرضی بنا لے، آپ کو جو اچھا لگے، صرف لیبل لگانے سے جنت نہیں ملے گی۔ اس آیت کا مفہوم کیا ہے کہ خود کو مسلمان مسلمان کہہ لے گا تو جنت میں نہیں جائے گا، یہودی خود کو یہودی کہنے کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، نصرانی اور صابی خود کو نام رکھنے سے جنت میں نہیں جائے گا۔ اب دیکھیے کہ کسی کے پاس چینی ہے نا، اب چینی کا ڈبہ کھلا رہ جاتا ہے تو چونٹیاں آتی ہیں نا، تو وہ کیا کہے کہ دیکھو میں چینی کے ڈبے پہ لکھ دیتا ہوں کہ یہ نمک ہے، تو کیا چونٹیاں اس لفظ نمک کو دیکھ کر چینی سے دور رہیں گی؟ وہ پھر بھی آئیں گی چینی کے پاس۔ بعض لوگوں نے اپنے اوپر ایک نام رکھنا ہی سب سے بڑی بات رکھ دی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ درست طریقہ کار نہیں ہے۔ سب سے زیادہ اس آیت پہ غیر مسلم زور لگاتے ہیں، اور خاص طور پہ انکار حدیث کرنے والے مسلمان۔ آج مسلمانوں میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جنہوں نے نفس سلم کو نکال کر آپ کی حدیث کو مشکوک کیا، حتیٰ کہ بخاری تک کو آپ سے دور کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ اگر دیکھیں اس بات کو دیکھیں گے تو تھوڑا سا اس پہ نوٹ کیجئے گا، اگر بالفرض نقطہ درست ہوا تو پھر تو قرآن کا باقی بہت بڑا حصہ ہی ناکارا ہو جاتا ہے۔ 13 سال نفس سلم نے مکہ میں کس چیز کی جنگ لی؟ بھائی مکہ والوں کو مکہ والے رہنے دیتے، مشرقین رہتے وہ، مدینہ میں آ کر جو اتنی جنگیں ہوئیں یہ کیوں ہوئیں؟ یہود کو یہود رہنے دیتے، اوس اور خزرج کو اوس و خزرج رہنے دیتے، تبلیغ کرنے دیتے۔ بات سمجھ گئے؟ یا پوائنٹس میں لکھیے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ یہ آیت چونکہ مس کوٹ ہوتی ہے نا، تو جب بھی لوگ اس کی تفسیر کرتے ہیں نا تو اس کی اپوزٹ پہ بات زیادہ کرتے ہیں، حالانکہ اصل میں یہ دیکھیں یہ ہے کیا۔ بات سمجھے؟ عموماً میں نے جتنی تفسیریں سنی یا پڑھی اس میں میجورٹی کا رخ کس طرف چل پڑتا ہے؟ ڈیفینسو تفسیر ہوتی ہے، دیکھو وہ ایسے سمجھتے ہیں وہ ایسے سمجھ نہیں۔ آپ پہلے اس آیت کی اصل سمجھیں گے نا، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ابھی ترتیب میں، تو آپ کو ساری چیزیں خود بخود سمجھ آ جائیں گی کہ پہلے تم اصل دین کو سمجھو۔ نام اپنا تم کچھ بھی رکھ لو، اب آپ دیکھیے ناموں سے کیا ہوتا ہے۔ آپ چیز استعمال کرتے ہیں آپ کو فوراً پتہ چل جاتا ہے یہ اصلی ہے کہ نقلی ہے، یہ کسی نے فیک نام لگا دیا تھا کہ نہیں تھا۔ ہر دور کے مسلمان، اب یہ چاروں ہیں بڑے گروہ۔ اب آیت کو ساتھ ہی لے لیتے ہیں تاکہ پھر اس میں باقی باتیں چلتی جائیں گی۔ دیکھیں، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے۔ ذرا آپ اس آیت کے اگلے دو لفظوں کو نظر میں رکھ کے اب اس آیت میں مسلمانوں کے لیے کیا نام آنا چاہیے تھا؟ آپ میں سے کوئی کوشش کرے گا؟ دیکھیے، ہادو یہودا سے نسبت، نصارا نصرانی سے، تو یہاں مسلمانوں کا تذکرہ ہے، تو یہاں پہلے کیا ہونا چاہیے تھا؟ محمدیون۔ ان المحمدیون والذین ہادو والنصارا، یہاں سے مسلمان کا اصل تعارف آپ کو مل رہا ہے۔ اسلام اور ایمان کس نسبت سے مسلمان بناتا ہے انسان کو؟ ایمان کی نسبت۔ اور ایمان کیا ہے؟ اللہ اور بندے کے بیچ کا ایک رشتہ۔ یہ رشتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں جڑتا، ان سے گزرتا ہے۔ میری آپ کی نسبت اللہ سے ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ہی تو ساری بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں ایک واسطہ بن جاتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں جوڑتے۔ چلیے، آمنو تو ہو گیا، نیکسٹ تھنگ ہے والذین ہادو۔ اب ہادو کا لفظ پھر یہاں گڑبڑ پیدا کرتا ہے، یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ والیہودیش، والذین یہود، والیہودیون؟ تو فرق سمجھیے گا، لفظ ہادو جو ہے نا اس کے دو معنی ہوتے ہیں۔ ہادا کیا ہے؟ تابا، یا ہادو تابو، توبہ کرنا۔ انا ہدنا الیک کا جملہ آگے ہم جا کے پڑھیں گے۔ جب بچھڑے کو پوجا تھا، جس کا تذکرہ پچھلی آیتوں میں تھوڑا سا ہو گیا ہے، تو یہود نے اس پہ توبہ کے لیے جو لفظ بولے تھے نا عبرانی زبان میں، وہ کیا تھے؟ ہادا۔ جیسے ہم عربی میں کہتے ہیں نا استغفر اللہ، استغفار معاف کر دے، یا توبہ استغفار، تو عبرانی یا ہیبرو میں لوگ کہتے تھے ہادا۔ تو ہادو کے دو معنی ہیں، وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، اور دوسرا ہادو سے مراد ہے وہ لوگ جو یہودی بن گئے۔ ایک لفظ ہادو میں دونوں میننگز ہیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب کے دور کے لوگ जिन्होंने खुद को यहूदी का, या फिर वो लोग जिन्होंने बछड़े के पूजने से तौबा की। सेम थिंग आपको लफ्ज नसारा में दिखेगी। नसारा जो लफ्ज है ना, असल में नासिर या फिर नसरान की जमा। उर्दू में जो लफ्ज हम बोलते हैं ना नसरानी, तो उसमें जो आखिर की छोटी या है ना, ये मुबालगा है। असल लफ्ज नसरानी नहीं होता। असल जो क्रिश्चियंस है ना, वो ये नाम पसंद नहीं करते, वो खुद को मसीही कहते हैं। इंशाल्लाह कुछ रेफरेंसेस आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ भी लफ्ज नसारा में दो मानी है। लिखिए, सवाल यहाँ भी पैदा हो सकता है कि वल मसीही यून क्यों नहीं कह दिया, नसरानी यून क्यों नहीं कह दिया। तो जवाब ये है कि नसारा लफ्ज में दो मानी है। नंबर एक, वो लोग जिन्होंने नासरा नाम की बस्ती की तरफ खुद को जोड़ा। ये एक बस्ती थी जहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, पले बड़े। बैतुल मक़द्दस से 19-20 मील दूर है ये जगह। तो कुछ लोगों ने खुद से उत्तर से जोड़ा कि हजरत ईसा की जाए विलादत है, तो हम उसी से अपने आप को जोड़ लें। दूसरा इसका मानी क्या है, मन अंसारी लल्लाह, सूरह सफ में हम पढ़ेंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने लोगों से पूछा था, मन अंसारी लल्लाह, तुम में से कौन अल्लाह के रास्ते में मेरा मददगार है? तो उन्होंने कहा था नहनु अंसारुल्लाह। तो अगर अब यहां ये नसारा ना होता ना, तो ये दो मानी नहीं थे, जैसे हादा में नहीं थे। बात वैसे आगे देखिएगा, वह साबी, लफ्ज साबी क्या है? नसारा का समझ नहीं आया। देखिए, लफ्ज नसारा में दो चीजें हैं। नंबर एक, वो लोग या वो लोगों का गिरोह जो नासिरा नाम की बस्ती से खुद को जोड़े, ठीक है। और दूसरा क्या है, वो लोग जिन्होंने कहा था नखनु अंसारुल्लाह, हम अल्लाह के मददगार हैं। बात समझ गए? यानी अल्लाह का कलाम देखिए इतना प्यारा है कि एक लफ्ज नसारा ने दो मानी दे दिए, जैसे हादा ने दो मानी दे दिए। बस साबेन, साबी कौन होते हैं? देखिए, लफ्ज सबा यस्बू कहते हैं निकलने को, एग्जिट। दीन से निकलने को कहते हैं खराजा का मानी है। जिस दौर में नबी सल्लम आए, उस दौर में साबी किसको कहते थे? जो बाप दादा का दीन छोड़कर किसी दूसरे दीन में आ जाए, ठीक है। अमूमी तौर पे साबी कहते हैं हर दीन के निकले हुए लोग, यानी कुछ लोग किसी भी दीन से निकलते हैं, उसको इधर उधर कर ले। मैं आपको इस आज के दौर की सिंपल सी मिसाल दे देती हूँ। आज के दौर में जैसे लफ्ज है ना कन्वर्ट या रीवर्ट, लफ्ज रीवर्ट सुनते ही आपके दिन में क्या आता है कि इस शख्स का दीन पहले कुछ और था, अब कुछ और हो गया। तो साबी जो थे ये कौन थे? और एक बहुत स्ट्रॉन्ग इसकी निस्बत है कि ये नसारा ही का एक फिरका है, क्रिश्चियंस का एक फिरका है, इसीलिए उनका नाम भी इधर आ गया। अरब लोग ये लफ्ज बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे। मसलन जब कहते हैं कि सबा नाबू बाइर, ऊंट का दांत निकला। देखिए, जैसे हम अपने बच्चों के दांत निकलने की नजर में रखते हैं ना, और सबको इसका दांत निकल आए, पहले वो खुश होते हैं, फिर जब वो दंदी काटता है तो फिर रोते हैं, हाय इसने मेरी उंगली काट ली। लेकिन खुशी होती है कि बच्चा बड़ा हो रहा है। तो ऊंट लोग जो है ना, अपने ऊंट के बड़ा होने का इंतजार करते हैं। तो जब किसी ऊंट का दांत निकल आता है, तो उसके लिए भी यही लफ्ज इस्तेमाल करते थे, साबा नाबू बईर। तो वो भी लफ्ज यहां से गुजर जाता है। बास लोग कहते हैं कि ये हजरत हारून अलैहिस्सलाम से निस्बत जोड़ने वाला गिरोह था, और ये वो लोग हैं कि जो इराक में रहते थे, और इन्होंने अपनी निस्बत सितारा परस्ती और नजूम से जोड़ी। बहुत है, आपको कहते हैं कि सिर्फ साबियों के लिए तकरीबन 20 से 21 अकवाल है तफसीरों में। अगर मैं आपको सारे लिखाऊं तो आपका जहन घूम जाए। दो किबलों की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने वाले, ज़बीहा खाने वाले, शिर्क से बचने वाले, हजरत हारून अलैहिस्सलाम के मुक्तदीन या जिन्होंने हजरत हारून अलैहिस्सलाम के दीन को रखा, फिर इसी तरह से इराक में जो लोग रहते हैं वो आज भी इनको मानते हैं, कहते हैं कि इनका ज़बीहा हलाल है, इनकी औरतों से निकाह हलाल है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह खुद इराकी थे, तो वो कहते हैं कि साबियों के साथ निकाह भी जायज़ है, क्योंकि ये अहले किताब का एक गिरोह आता है। और बास कहते हैं कि ये आज भी मौजूद है, लेकिन अगर हम देखें तो हमें आजकल ये लोग नहीं दिखते। लेकिन ये बात समझ आती है कि तीन बड़े ग्रोहों के साथ चूंकि अल्लाह ताला ने इसका नाम रखा है, तो ये को बड़ा ही ग्रोह होगा, ठीक है। चलिए, अब ये बात तो खत्म हुई है, कौन लोग थे? मन आमना बिल्ला, यहाँ लफ्ज मन पे गौर कीजिए, जिसको मैंने शुरू में पहले आपको हिंट दिया था कि ये नाम रखने से कुछ नहीं होगा। आयत का मफहूम देखिए, ईमान वाला यहूदी नसरानी या साबी कहलाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि मना मना बिल्लाहि वल यौम आखिर, वो जन्नत में जाएगा जो ईमान लाकर यौम आखरत पर ईमान लाएगा। जो इस तरीके से जाएगा फिर बात होगी। या फिर जरा सा एक बारीक नुक्ता देखिए, कुरान में अक्सर क्या आता है, इन्नल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहात, अमीलू का लफ्ज आता है ना, यहाँ अमीला क्यों आया है? अब आप मुझे बताएं या मैं आपको बताऊं, वाहिद में क्यों है? देखिए लफ्ज अमीलू आना चाहिए ना, लेकिन यहाँ अमीला आया, पीछे चार गिरोहों की बात है। यहाँ मन के बाद एक बंदे के लिए अमीला वाहिद गायब का सीगा, यानी माजी का सीगा है वाहिद के साथ गायब से। क्यों? जिस एक ने अमल किया सालिहन अच्छा, फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, उनका अजर है उनके रब के पास, इनफिरादी मुहासबा होगा। वो कहता है ना कि पिदरम सुल्तान बूत, मेरा बाप बादशाह था। भाई वो तो बादशाह था, तुम क्या हो? बस लोग सोचते हैं कि आमद के दिन हिसाब किताब में टीम वर्क चलेगा, तो एक ना एक पूरा ग्रुप ही निकल जाएगा, चलो तुम सारे ही जाओ। नहीं, एक एक बंदा खड़ा किया जाएगा। मना मना बिल्लाही वल यौमिल आखिरी वामिला सालेहन में ये बता दिया कि जन्नत में जाने के लिए तुम्हारा इनफिरादी ईमान अल्लाह के साथ, तुम्हारा आखिरत के ऊपर भरोसा और तुम्हारा अपना अमल दिखेगा। आपके मेरे अम्मी अबू बहुत अच्छे काम करते हैं, आमिलु सालेहात। नहीं, तुम बताओ कि तुमने कौन सा अच्छा अमल किया है। फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, उनका अजर उनके रब के पास है। अजर किसको कहते हैं? उर्दू का एक लफ्ज हम बोलते हैं उजरत। उजरत क्या होती है? मजदूरी। तो अजर किसको मिलेगा? जिसने मजदूरी की होगी, बगैर मेहनत किए, बगैर काम किए। लोग जन्नत की अगर आस लगाए बैठे हैं तो वो गोया के ऐसे ही हैं कि जो मजदूर काम पे तो आया नहीं और शाम को पैसे लेने पहुंच गया। गोया के इस आयत ने खुशफहमियां जो थी वो इंसान की दूर कर दी कि देखो तुम्हारे लिए ये बात अपने लिए सोचना सही नहीं है। अच्छा, ये जो अल्लाह सीना हादू है ना, आप देखिएगा कि ये वो लोग हैं जहूद जो है ना, ये आपको एक बड़ी अच्छी सी बात समझाने वाली हूँ, इसलिए थोड़े से केयरफुल हो जाए। ये नस्ली दीन है, यानी इनमें इतना तासुब है, ये कहते हैं कि जो बोन यहूदी होगा ना, बस वही यहूदी है। जैसे हम तो कोशिश करते हैं ना दूसरे मुस्लिम हो जाए, रिवर्ट हो जाए, फिर हम उनको गले से लगाएंगे, हम प्यार करेंगे कि ये मेरी रिवर्ट सिस्टर है, राइट? ये लोग ऐसा नहीं करते थे, लेकिन हुआ क्या? अब आप जरा सा देखिए कौमें कैसे एक से दूसरे का रंग अख्तियार करती है। यहूद जब मदीना में आकर बसे, जिसको यसरब कहते हैं, तो इन्होंने बिल्कुल नहीं कोशिश की कि मदीना के लोकल लोग जो हैं वो यहूदी बन जाएं, क्योंकि ये कहते हैं नहीं, यहूदियत एक अशरफ है, शरफ समझते हैं, ऑनर। बाय बर्थ जिसकी माँ यहूदी नहीं है, बस वो यहूदी नहीं हो सकता। तो कह सकते हैं कि यहूद एक नस्ली मजहब है, तबलीगी मजहब नहीं है। ये जुमला लिखेंगे तो आपको इनकी सोच समझ आएगी। किसी गैर इसराइली को बाज़ाब्ता यहूदी बनाने का इनके अंदर तरीका नहीं है। लेकिन अरब में कुछ ऐसे कबीले थे जो ना तो पैदाइशी यहूदी थे ना नस्लन थे, बल्कि अरब थे या गैर बनी इसराइली थे, लेकिन यहूद की सोहबत से मुतासिर और इनके उलूम से मरऊब थे। जब इन्होंने मदीना में यहूद को देखा कि ये हमसे बेहतर हैं या इनके पास कुछ ना कुछ तो है, तो मरऊबियत की वजह से पहले यहूद के तौर तरीके अपनाए, फिर उनके अकीदे अख्तियार कर लिए। रफ्ता रफ्ता इनका शुमार भी यहूदी आबादी में होने लगा। इसलिए भी यहां अल्लाह जीना अल यहूद की बजाय अल्लाह जीना हादू का। अच्छा, ये मेरी बात सुनते वक्त आपका जहन कहीं गया? जरा सोचिएगा, पहले क्या किया इन्होंने, सोहबत से मुतासिर, सेकंड स्टेज पे होती है मरूबियत, तीसरे पे होती है उनके तौर तरीके, और चौथे पे क्या उनका अकीदा। आज मुसलमानों का क्या हाल है? क्या आपने कभी कोई ऐसा मुसलमान देखा है जो खुद को यहूदी कहना चाहे? आई एम क्रिश्चियन को कहना चाहता है? अल्लाह के हुक्म से आज भी इस गए गुजरे दौर में आपको शायद किसी ने उल्टी सीधी वेबसाइट या वीडियो चार छह बनाकर यूट्यूब पे डाल दी होंगी कि एक्स मुस्लिम, वाई आई लीव इस्लाम। अदरवाइज हमने नहीं देखा, और दुनिया भी जानती है कि मुसलमान अपना नाम नहीं छोड़ता। लेकिन नंबर एक क्या सोहबत है यहूद नसारा की, उनके अलूम से मरूबियत है, उनके तौर तरीके हैं और उनके अकीदे इख्तियार हुए। आप कहते हैं क्रिसमस से क्या होता है? क्रिसमस से बहुत कुछ होता है मनाने से, ये अकीदा है आपका। और फिर आहिस्ता आहिस्ता अब क्या हमारा शुमार भी उन्हीं में तो नहीं होने लगा? ये मेरे आपके लिए नुक्ता है। जब नबियों की चुनी हुई उम्मतें, अल्लाह की चुनी हुई उम्मतें जो नबियों से ताल्लुक रखती हैं, दूसरों से मुतासिर हो जाती हैं, तो वो नाम की मुसलमान रह जाती हैं, जैसे आज हमारे साथ भी कुछ ऐसे ही हो गया। तो लिहाजा अल्लज़ीना हादू से फिर हम सारे वो लोग कहेंगे जो कि मजहब यहूदिया से किसी न किसी किस्म का ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि बनी इसराइल की कौमी हुकूमत और वजाहत का खात्मा तो इस्लाम के आने से मुद्दतों पहले, कह लें 70 ईस्वी तक मुशरिक रूमियों के हाथों जब बैतुल मक़दस की बर्बादी हुई थी तो असल में यहूदी मज़हब ख़त्म हो चुका था, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के जो यहूद थे ना, इनकी हैसियत सिर्फ मजहबी और दीनी फ़िरके की रह गई थी। मैं आसान करती हूँ सारे आखिरी जुमले को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो यहूद थे ना, वो असल यहूद कोई नहीं थे, फ़िरका था एक यहूदियों का, वो सब खत्म हो गया। इधर उधर से रंग लिए हुए दिए हुए, वो एक उसका लिया, एक उसका टुकड़ा लिया, इसका ले लिया, ये सब कुछ खत्म कर दिया। और जो नसारा है ना, मुल्क शाम में फलस्तीन का एक कस्बा है नासिरा, वहाँ एक इलाका है गलीली, गलीली आपने सुना होगा, ये इनकी अक्सर इंग्लिश वेबसाइट्स में भी होता है। बैतुल मक़दस से 70 मील दूर बहरे रोम से मशरक में 20 मील के फासले पर ये आबादी मौजूद है। कहते हैं 8 से 9 हज़ार टोटल उनकी आबादी थी, हज़रत ईसा का आबाई कस्बा यही था। इसी से फिर वो यसूद नासरी की नस्बत से कहलाते थे, तो लिहाजा अपने आप को नसारा कहते थे या नसरानी कहते थे। खैर ये बातें भी हो गई, ये सब कुछ चला गया। अब आगे आप देखिए कि इस आयत को पढ़ने के बाद मेरा आपका अमल क्या होना चाहिए, हमारी अपनी ज़िंदगी में क्या अमल होना चाहिए कि अल्लाह के दिए हुए दीन पर राज़ी हो जाए। अल्लाह और उसके रसूल के ज़रिए जो चीज़ है उसको पाना है तो फिर उसके लिए आमन व अमिलु सालिहात। दूसरी इसमें एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है जो आपने शायद नोट की है कि नहीं, मैं असल में आपको क्रिटिकल बना रही हूँ लेकिन आप में से अभी काफ़ी लोग नहीं बन रहे। यहाँ क्या चीज़ मिसिंग है, आपको इस अंदाज़ को सुनकर क्या लगा? ये तीसरा मौका है आपके पास कुरान पाक में, 7 आयतें सूरत फातिहा की और 62 आयतें आप पढ़ रहे हैं बकरा की, तीसरा मौका है कि सेम चीज़ आपके सामने आ रही है, कोई गैस करना चाहेगा क्या इसमें क्या है? देखिए मैं आयत पढ़ती हूँ ना, साबिन तक बात होगी, मना मना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अमिला सालिहन। चलिए सूरत बकरा के दूसरे रुकू के शुरू की आयत पढ़िए, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ। वहां भी यही अंदाज था ना, आमना बिल्लाह और वल्यौम आखिर, वहां क्या मिसिंग था, मुनाफिक का मसला क्या, रसूल की तब। हर दौर में आज भी, आज के तो मुसलमानों को, पहले तो गैर मुसलमों को सबसे ज्यादा जो हस्ती खटकती थी ना, वो मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खटकते थे। ये बात है कहने की, आज भी पूरा हमला नबी सल्लम के ऊपर है कि एक दफा इनको बदनाम कर दें। जब नबी रंगीला रसूल जो बन गया और नबी के कार्टून बन गए तो लोग उसकी हदीस पढ़ेंगे। देखिए आप किसकी बात लेते हैं जिसकी आपके दिल में इज्जत होती है, और सच बताऊं जिसकी इज्जत कोई नहीं होती हम लेके भी कोई नहीं लेते, हम कहते इनको क्या, ये तो कह दिया इन्होंने, खत्म हो गई बात। आज लोग नबी सल्लम की बात को अगर मानते हैं तो उनकी इज्जत की वजह से मानते हैं। आज मुसलमानों पर यही सारा हमला कर करा के लोगों ने कहा कि इनको निकालो, जब नबी जो निकल गया तो फिर कुरान को कैसे समझेंगे, डिक्शनरी से। मसलन युकीमुनस्सला, नमाज कायम करते हैं, डिक्शनरी में गए सलात का मानी देखा, आग तापना, ठीक है। अब किसी को देखा वहां आग जलाए हुए और साथ हाथ तो उसके ऊपर गर्म कर रहे, पूछे क्या कर रहे हो, कहेगा सलात पढ़ रहा हूँ। भाई तुम्हें ये तरीका सलात पढ़ने का किसने बताया, कहता है डिक्शनरी बताती है। भाई वो सल्लू कमार आई तुम उन्हीं, सल्ली किधर गया, कहते वो किसकी बात है हम तो उसको मानते ही नहीं है। समझ आ रही है आपको, नबी की हैसियत ऐसे जैसे इस पूरी बिल्डिंग में ढांचा है, ये जो लोहे के पूरा स्केल्टन है, फिर उसके ऊपर वो शीट रॉक्स और चीजें डालते हैं ना, जिसने सुन्नत को और सीरत को निकाल दिया ना, पूरा दीन मलबा है। और आज इतनी कोशिश है, मेरा जुबान पे नाम आते हैं, मीडिया पे ऐसे ऐसे लोग आज लोगों को दीन सिखा रहे हैं कि आप अंदर खाते देखे तो वो नबी को हटाकर आप उसकी जगह ख्वाहिश और सहूलत को। मेरे अपने कानों ने सुना अल्लाह के नबी ने कहा है कि बशिरु वला तुनफिरु, लोगों को खुशखबरियां दिया करो, नफरतें ना दो, तो आसानी की खातिर कोई हरज नहीं, नेल पॉलिश के ऊपर भी नमाज पढ़ लो तो खैर है, आसानी देनी चाहिए आज के दौर में लोगों को, और आज सूद के बगैर कैसे रह सकते हैं, तो आसान कर दो दीन को, और नबी के हदीस कोट करते हैं। दीन की सच और झूठ को परखने का एक ही मेयार है और वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद आप देखिए कि नबी सल्लम की फिर दावत खत्म। अगर हम ये कहते हैं कि मुसलमान होना जरूरी नहीं जन्नत में जाने के लिए, तो दावत खत्म, फिर क्यों आप इतनी तबलीगी जमात बना बना के गलियों कोनों में फिर रहे हैं कि लोगों को दे। अल्लाह के नबी ने तो बच्चे बच्चे को कहा था कि बल्लिगुअन्नी वलौ आया। यहां से आपको समझ आता है कि असल में दुश्मनों की नजर इस वक्त किस बात पे है, कि किसी तरह इस्लाम की तबलीग खत्म हो और जो पैदाइशी मुसलमान है उनको हमने अपने रंग में रंग लिया, आगे से कोई ना आए। आपने नोट किया कि जो रिवर्ड्स होते हैं ना, वो कितने सच्चे मुसलमान होते हैं, वजह क्या है, वो इन सारी चीजों से गुजर चुके होते हैं। किसी की मैं स्पीच सुन रही थी तो उन्होंने अपने कुलीग का जिक्र सुनाया कि वो इतना इंटरेस्टेड है, वो काम भी नासा में करते हैं जो कि आपको पता है ह्यूस्टन में बहुत बड़ी नासा की कंपनी जहाँ से सेटेलाइट्स वगैरह भेजते हैं, तो वो इतनी क्लोजली सर नेचर को देखता है ना, तो ये कहते हैं कि मैं जब उससे बात करता हूँ तो मैं उसको कहता हूँ कि बताओ तुम सुनाओ, तो कहता है कि आई एम 100% कन्विंस्ड कि देर इज गॉड और एक गॉड है, बट मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरे दिमाग में कि जो अनसीन चीज़ें हैं अल्लाह रसूल फरिश्ते जन्नत उनमें से बस कोई एक चीज़ मुझे आंखों से दिख जाए तो मैं मान जाऊंगा। साइंसदान है ना, तो उसका सवाल भी साइंसदान है, तो उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता, अल्लाह ने जो कह दिया नहीं दिखना तो नहीं दिखना। कहने का मतलब यह है सारी बात में से कि नबी को बीच में से नहीं निकाल सकते वरना बात जो है वो बिगड़ जाएगी। फिर दूसरी बात देखिए कि इस आयत को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेने की एक और वजह जो हम रद्द कर सकते हैं, किसी भी आयत को समझें ना तो तीन बातें याद रखें, आप मेरे से भी तो रोज सीखने आ रहे हैं ना, तीन बातों को हमेशा जहन में रखा करें जो भी बताई जाती है इधर। नंबर एक ये कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, सियाको सबाक क्या है, इससे पीछे क्या था और इससे आगे क्या है, और अगर आप गौर करेंगे ना बाद में इस सबक के, इसके पीछे भी वही के लेने की बातें और इसके आखिर में भी वही की हैं। पीछे भी कहा खुजू मा तईनाकुम बिकुव्वा और आगे भी ये कुछ आ रहा है, तो क्या पता चला टैक्स के बगैर नहीं बात कर सकते। दूसरी बात ये है कि किसी भी आयत से कोई मफहूम लेते हुए इबारत का वो मफहूम लीजिए जो पूरे दीन के तालीमात से मुताबकत रखता हो। क्या इस आयत के अलावा कुरान और हदीस में कहीं ये मौजू आया? बिल्कुल आया, उसको सामने रख के इस आयत का मफहूम समझें, ये दूसरी वजह है। तीसरी चीज क्या है कि अगर किसी बात का हुक्म दिया गया हो और किताब की किसी इबारत से हुक्म के खिलाफ जरा वहम पड़े जैसे लोगों को यहां हो गया, तो फिर इबारत का वो मफहूम लीजिए जो के हुक्म के मुताबिक है। अल्लाह के नबी ने कह दिया, साफ हदीसें मौजूद हैं, मैं आपके सामने 10-12 हदीसें रख सकती हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके कानों ने सुन लिया कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आ गया फिर इसके बाद भी वो ईमान न लाया तो उसका ठिकाना जहन्नुम है। ये सही मुस्लिम की रिवायत है 386। मैं आपको सिर्फ मफहूम लिखा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है और अबू हुरैरा इसके रावी हैं। फिर इसी तरह हज़रत अब्बास से रिवायत है कि नबी सल्लम ने फरमाया जिस शख्स ने अल्लाह के रब होने इस्लाम के दीन होने और मोहम्मद सल्लम के रसूल होने पर अपनी रजा का दिल से ऐलान किया उसने ईमान का मज़ा चख लिया। ये भी मुस्लिम की रिवायत है। उबादा बिन सामित से रिवायत है कि जो इस बात का कायल हो गया कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और रसूल हैं और हज़रत ईसा अल्लाह के बंदे और उसकी बंदी यानी मरियम के बेटे और कलिमतुल्लाह जो उसने मरियम की तरफ इल्का किया और वह रूहुल्लाह हैं, तो ये कि वो जन्नत हक है और दोजा हक है तो जन्नत के आठों दरवाजों में से जिसमें से मर्जी दाखिल हो जाए। ये भी सही मुस्लिम की रिवायत है। कुरान की आयतें मौजूद हैं इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन तो अल्लाह की नज़र में सिर्फ इस्लाम है, सूरह आले इमरान में आप पढ़ेंगे। इसी तरह आले इमरान में आयत 85 में आएगा वमई यबतगी गैर अल इस्लाम ही दीना। अब इन सारी आयतों को कहाँ छुपाएंगे कि जो इस्लाम के सिवा कोई दीन लेकर आएगा फलें युकबला मिनहु उससे दीन कबूल नहीं किया जाएगा बाखुआ फिल आखिरती मिनल खासरीन। तो सारी बात को वाइंड अप करके आगे जाऊंगी, यहूद नसारा या दूसरे अदियान दो हिस्सों में बांटे जाएंगे, नबी सल्लम की बेसत से पहले और नबी सल्लम की बेसत के बाद। बहुत सारे यहूद जन्नत में जाएंगे, बहुत सारे नसारा जाएंगे और साबईन का अगर यहाँ जिक्र है तो वो भी जाएंगे, कौन से? जो नबी सल्लम की आमद से पहले दुनिया में थे। और मजे की बात देखिए ये आखिरत पर ईमान की बात है, पिछले सबक की पहली आयत में आखिरत का क्या अकीदा सुन चुके हैं कि यहूद ने तो अकीदा आखिरत ही अपने किताबों से निकाल दिया तो फिर उनका ईमान तो मोतबर हो नहीं सकता। बहरहाल जो ये कर लेगा उसको क्या मिलेगा? फरमाया कि फलहु मजरुहु मिंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहसनून। आप इस आयत के टुकड़े को मिलाते हैं जरा आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में भेजे जाने वाली आयतों से, फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिय हुदाया या फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहसनून। सच्चा दीन अमन देता है। आज सुबह भी मैंने ये कोटेशन कुछ ग्रुप्स में शेयर की है मुख्तलिफ क्लासेस में, तो उसका खुलासा क्या था, इब्ने कय्यिम रहमहुल्लाह की गालिबन बात थी कि सच्ची खुशी की तलाश में जो लोग सरगर्द हैं उनको बता दो कि सच्ची खुशी इस किताब से जुड़कर अल्लाह का हुक्म मानने में। बाकी किसी को फिर शराब में खुशी ढूंढनी पड़ती है, तो किसी को म्यूजिक में ढूंढनी पड़ती है, और वो उनसे हो नहीं सकती। तो अल्लाह ताला अपने दोस्तों को गम से आज़ाद करेंगे। सूरत यूनुस आयत 62 में भी हम पढ़ेंगे, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें बेखौफ कर दे, हर चीज़ से बेनियाज कर दे, अपने आप को पीछे ले आओ। एक और आखिरी बात फिर लिख लें, मना मना बिल्लाही कहकर नबी सल्लम के दौर के यहूद और नसारा को ईमान लाने की दावत दी गई। क्या अपने आप को अगर जन्नत में ले जाना चाहते हो, बिल्कुल जाओगे तुम, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पहले तुम भी ईमान ले आओ। चलिए, एक बड़ा टॉपिक तो आज के सबक अल्हम्दुलिल्लाह कवर हो गया। जी बिल्कुल जाएंगे, सारी कौमें जाएंगी, जिस जिसने अपने अपने वक्त के नबी की दावत कबूल की थी वो जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद जाने की शर्त एक ही है, कि आपको भी माने। और कुरान और इस्लाम जो है ना, ये असल में अब खत्मी शक्ल में एक लेटेस्ट वर्जन की सूरत में सामने आ गया, कि अब इसको तो मानना ही पड़ेगा। आपने देखा है कि कुछ कंपनी जब नया मॉडल बना लें तो पिछला बनाना बंद कर देती हैं, क्यों? कि अब कौन लेगा, मतलब iPhone 3 कौन लेगा, राइट? तो पिछली अब क्रिश्चियनिटी कौन लेगा, इतनी पुरानी ज्यूइज्म कौन लेगा, खत्म। अब सबको अगर वाकई वही दीन जो हजरत ईसा और मूसा का था, तो वो इस्लाम की सूरत में आप कहते हैं ये ले जाइए, इसमें पिछले सारे फीचर्स भी हैं। बस iPhone 7 है, तो क्या उसमें iPhone 3 वाली खूबियां नहीं होंगी? वो हैं, प्लस और भी होंगी। तो लेटेस्ट इस्लाम इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड ज्यूइज्म, ठीक है? अच्छा, एक छोटी सी बात कर दूं आपके साथ, पीछे भी करती रहती हूँ यहाँ भी कर दूं, कि आज के दौर के यहूद और नसारा के बारे में आप और मैं क्या कहेंगे? ये काफिर, ये जहन्नमी, चूंकि तुम नहीं मानते तो जहन्नमी। आपको मुझे किसी पे कुछ बोलने का हक नहीं है, खामोश। क्यों? आपको उसके दिल का हाल नहीं पता। दूसरी बात है कि वो भी जिंदा है, जिंदा जिंदा किसी इंसान पे आप कोई बात नहीं कर सकते। और तीसरी बात है, क्या मैं और आप मुफ्ती हैं? क्या आप और मुझे अल्लाह ताला ने दुनिया में वो जाके तबसरे करने वाला या वो स्टैम्प करने वाला भेजा, जन्नती जहन्नमी जहन्नमी जहन्नती? ईमान वाले को तो हर वक्त अपना गम लगा रहता है। नबी सल्लम फरमाया करते थे कि मैं नहीं जानता कि लोगों कल मेरे साथ क्या होगा, मा यू फॉलो बी व बिकुम, तुम्हारे साथ मेरे साथ क्या होगा। किसी के लिए कुछ ना कहे। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कन्फेस नहीं किया, लेकिन उनके पास ईमान है। जरूरी है कि हर यहूदी पहले आगे मेरे कान में कहते कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर वो मुसलमान हुआ? आप यकीन करें, इस वक्त भी दुनिया में नॉन मुस्लिम लोगों में कुछ इतने बा अखलाक, इतने आला किरदार के लोग हैं कि आप उनको देखें तो आप कहते हैं कि ये तो मोमिन है। अक्सर लोग कहते हैं ये कलमा पढ़ लें तो ये मोमिन है। कोशिश करें, दावत दें प्यार से, लेकिन प्लीज अच्छी दावत दें, ये ना कि आपकी दावत से वो इस्लाम से ही दूर हो जाए। लेकिन फतवा नहीं दे सकते, आप दावत दे सकते हैं, आप दुआ कर सकते हैं, आप उनके लिए अच्छा गुमान रख सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये जहन्नमी है। ये किसी एक के लिए ना मुझे कहने का हक है ना आपको, ये तो अल्लाह के नबी को भी नहीं था जब तक कि अल्लाह का हुक्म नहीं उतर आता था। तो लिहाजा दुआ करें कि हमारे इर्द गिर्द रहने वालों में कोई भी जहन्नमी होके ना मरे। दिल चाहता है? आपके नेबर में आग लगी हो तो आप सुकून से बैठ जाएंगे? जलने की बुआ आ रही और आप कहते हैं है काफरों का घर जले, मैं क्यों कहूँ? नहीं, फिर वही बात, काफिर और गैर मुस्लिम में फर्क है। दावत तेज करें, अपना अमल बढ़ाएं, आप अपने प्यार से उनके साथ बातें करें, इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि अगर आपके दिल में सच्चाई है तो आएगी। देखिए, वो कहते हैं ना इंग्लिश में भी एक जुमला ना, कि वर्ड कम्स फ्रॉम हार्ट गोज टू हार्ट, जो दिल से जो बात निकलती है दिल में जाती है। तड़पें, दिल में तड़प रखें आप अपने इर्द गिर्द वालों के लिए। रोज दुआ करें सुबह उठ के, अल्लाह इनको ईमान दे दे, अल्लाह ये अच्छे लोग हैं, अल्लाह ये दुनियावी हिसाब से नेक लोग हैं, तो इनको ईमान दे दे। बाकी रह गए अपने मुसलमान, तो पर्दा ही डाल दिया रखें तो बहुत बड़ी बात है। कई मुसलमानों की औलादें भी अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन और कुरान से दूर हो चुकी हैं। तो बहरहाल, अल्लाह ताला हमारी इस्लाह फरमाए।